भगवान ने कहा है योगी बनो, पवित्र बनो। पर यह देखा गया है कि जब भी कोई मनुष्य योग साधना में बैठता है तो उसके मन बुद्धि में भूतकाल और भविष्यकाल के अनेकों विचार चलते हैं, जिसके कारण वह पूर्णतः वर्तमान में नहीं जी पाता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है मन को रोकना असंभव है। लेकिन हम आपके सामने एक बात रखना चाहते हैं, मन रूपी घोड़े पर लगाम कसना संभव है, पर इसके लिए जरूरत है त्याग, तपस्या और वैराग्य वृत्ति की। तो इन्हें अपने जीवन में कैसे धारण करें, आइए देखते हैं गीता रहस्य के 20वें एपिसोड।
श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य मात्र के लिए एक श्रेष्ठ वरदान है। ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ जिसमें डायरेक्ट भगवान की वाणी लिखी हुई हो, उसके महत्व को आज अनेक भारतवासी भी नहीं जानते हैं। वे सोचते हैं गीता पढ़ना तो सन्यासी और पंडितों का काम है, या उन्हें एक भ्रांति हो गई है कि गीता को पढ़ने से तो वैराग होकर मनुष्य सन्यास ले लेगा, इसलिए लोग अपने बच्चों को भी गीता पाठ करने नहीं देते हैं। परंतु गीता एक बहुत ही कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ, मैं कहूंगा शिरोमणि शास्त्र है, जिसमें भगवान के प्रत्यक्ष महावाक्य हैं, डायरेक्ट भगवान बोलते हैं। किसी को ये संशय हो सकता है कि श्री कृष्ण तो भगवान नहीं थे। हम यहाँ आपको बता दें कि ये महावाक्य उस महाज्योति के हैं जो ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण तो मात्र इसमें एक माध्यम बना दिए गए हैं। परमात्म महावाक्यों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ, महान, कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी आदर्श बना सकते हैं, जैसा कि पीछे आ चुका है। मनुष्य इस कलयुगी कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान रह सकता है, जिस पर ये कीचड़ असर न करे और मनुष्य कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहकर एक ऐसा जीवन व्यतीत करे जिसमें उसको भी आत्मसंतोष प्राप्त हो और उसके साथ रहने वाले, उसके साथ काम करने वाले, उसके साथ संपर्क संबंध में आने वाले सभी मनुष्य भी बहुत प्रसन्न रहें। तो श्री मद भगवत गीता के 6 अध्याय में अंतिम श्लोकों की ओर हम बढ़ चले हैं। भगवान जब योग की चर्चा कर रहे हैं तो अर्जुन उनसे एक प्रश्न करता है जो सभी का प्रश्न है कि मैंने योग अभ्यास करके देखा है, मन की चंचलता के कारण योग अभ्यास में बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, ऐसे में योग के सुंदर अनुभव भी हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ये मन बड़ा ही दृढ़ और बलवान है, इसे कैसे वश में किया जाए, सबका ये प्रश्न है। अर्जुन भी कहते हैं ये मन को रोकना तो ऐसे ही है जैसे वायु के वेग को रोकना। अब वायु का वेग तो किसी साधन के द्वारा, किसी विज्ञान के द्वारा भी रोका नहीं जा सकता है, परंतु मन के वेग को रोकना सचमुच संभव है। इसमें त्याग, वैराग्य और अभ्यास की परम आवश्यकता होती है। भगवान ने यही उत्तर दिया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को अचल किया जा सकता है, निश्चल किया जा सकता है। हमें कुछ बातों पर और भी ध्यान देना है कि हमारे मन को भटकाने वाली चीजें कौन कौन सी हैं। हर एक का मन अलग अलग कारणों से भटकता है। हो सकता है एक का मन काम धंधे में बहुत भटकता हो, लेकिन दूसरे का मन किसी के संपर्क संबंध के डिस्टरबेंस के कारण भटकता हो, तीसरे किसी व्यक्ति का मन मोहों के कारण भटक रहा हो, चौथे किसी व्यक्ति का मन बहुत सारी इच्छाएं, लोभ, लालच के कारण वश में न रहता हो, ऐसे ही भिन्न भिन्न मनुष्यों के मन के भटकने की गति अलग अलग है। किसी का मन बदले की भावना से बहुत ज्यादा प्रेरित रहकर जहां तहां भटकता हो, तो किसी का मन दूसरे के कहे गए बोल या किए गए अपमान के कारण बहुत विचलित हो गया हो। रोज भी मन के भटकने की गति अलग अलग ही है। आज एक कारण से मन भटक रहा है तो कल दूसरे कारण से, तो परसों तीसरे कारण से। पहले हमें उन कारणों पर ध्यान देना होगा जो योग अभ्यास करना चाहते हैं, जो इस तरह ईश्वरीय मिलन के परम सुख को पाना चाहते हैं। वो अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें, मेरे मन को भटकाने वाली चीजें ये हैं। ज्ञान का प्रयोग करते हुए उन चीजों से मन को थोड़ा हटाएं, अपने मन को अच्छे विचार दें, अच्छा दृष्टिकोण अपनाएं, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें, बदले की भावना को क्षमा भाव में बदल दें, दुआएं देने लगें दूसरों को शांति मिले ऐसा संकल्प करने लगे, दूसरों के चित्त भी शांत हो, जो हमें कष्ट दे रहे हैं उन्हें भी सुख प्राप्त हो, जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं उनका भी अच्छा हो, ऐसी दुआएं लगातार दूसरे मनुष्यों को देने लगे। ऐसा करने से हमारा चित्त शांत हो जाता है। क्यों चित्त शांत हो जाता है इसके भी गुह्य रहस्य को हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा मूल रूप से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। इस मूल नेचर के विपरीत जब मन जाता है तो अशांति होती है, परेशानी होती है, टेंशन होती है, और जब इस मूल स्वरूप की ओर फिर हम अपने चित्त को ले जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। यदि हम दूसरों के लिए कल्याणकारी विचार करने लगते हैं, मन से दुआएं देने लगते हैं, शांति की कामना करने लगते हैं, क्षमा भाव अपना लेते हैं, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मूल स्वरूप में आ जाती है और इस तरह मन शांत होता है। जैसा कि भगवान ने कहा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। आगे भी ये बातें बहुत आई हैं कि वैराग्य की कैंची से इस मोह माया को तुम काट डालो। वैराग्य से ही मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है त्याग। यदि वैराग्य ना आए तो त्याग नहीं होता। तो पहले हम ले लेते हैं अभ्यास को, जिसे योग अभ्यास करना है, जिसे योग का सुख लेना है, उसे इसके लिए बार बार समय भी देना चाहिए। सारे दिन में सबसे पहले सवेरे उठकर योग अभ्यास किया जाए, क्योंकि सवेरे प्रकृति शांत होती है। संसार के बहुत सारे मनुष्य हमारे आसपास सोए होते हैं, तो हमारे आसपास का वातावरण संपूर्ण रूप से शांत, मन को चित्त को प्रसन्न करने वाला, तन की कर्मेंद्रियों को भी शीतल करने वाला होता है। अनेक लोग जो भक्त हैं या योग अभ्यासी हैं, इस समय उठकर परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसके वाइब्रेशंस भी योग अभ्यास में मनुष्य को मदद करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास चाहिए सवेरे उठकर अपने मन को आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करके परमात्मा का चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में मगन होने का अभ्यास करना चाहिए। हम योग की विधि की चर्चा बार बार कराए हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं आत्मा यहाँ हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, कर्मेंद्रियों से अलग हूँ, इनकी मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार सभी की मालिक हूँ। अपने मन बुद्धि संस्कारों से बात करें, हे मन अब तुम मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकते, हे बुद्धि जहाँ मैं कहूँ अब तुम वहीं स्थित हो जाओ। अब हे मेरे मन और बुद्धि, परमात्मा चिंतन में परमात्मा स्वरूप पर अपने को स्थित कर दो, तुम मेरे मित्र बन जाओ, तुम मेरी शक्ति तो हो। संस्कारों से बात करो कि हे संस्कारों अब तुम इधर उधर नहीं जाना, तुम्हारा एक संस्कार शांति भी है, अब शांत हो जाओ। सवेरे उठकर इस तरह चिंतन करते हुए फिर परमात्मा जो महाज्योति है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, दुख हरता है, बिगड़ी को बनाने वाला है, जो सभी के मन को शांत कर देता है, जो सभी के क्लेश मिटाकर, दुख मिटाकर, सभी को सुख प्रदान कर देता है। उस परमात्मा का चिंतन करते हुए उसके स्वरूप में स्वयं को स्थित करें, मन सवेरे जल्दी ही एकाग्र हो जाएगा, उसकी भटकनें शांत हो जाएंगी और ये अभ्यास सारा दिन बहुत काम आएगा। सभी को मालूम रहे कि सवेरे का समय हमारी पूरी दिनचर्या का क्योंकि मूल भाग है, इसलिए उस समय का प्रभाव, उस समय किए गए विचारों का प्रभाव हमारे पूरे दिन पर पड़ता है। और इस तरह यदि कोई मनुष्य रोज सवेरे उठकर योग अभ्यास करे, अपने मन को शक्तियों से, खुशी से, शांति से, अच्छे विचारों से भर ले, तो उसका सारा जीवन ही श्रेष्ठ हो जाता है और महान हो जाता है। सवेरे उठकर हमें अपने मन के अंदर बहुत अच्छे शक्तिशाली संकल्प क्रिएट कर लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे कैसा होना चाहिए? मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भी सभी को सुख प्रदान करूँगा। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं उसकी ही तरह प्रेम बांटूंगा। मैं भगवान का बच्चा हूँ, वो सबसे महान है, मैं भी संसार में महान बनूंगा। मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ, मैं हंसते हंसते विघ्नों को पार कर लूंगा। मैं विघ्न मुक्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मेरा जीवन संपूर्ण रूप से निर्विघ्न है। आज मैं संपूर्ण रूप से शांत रहूंगा, किसी भी तरह से, किसी भी कारण से क्रोध के वश नहीं होऊंगा। आप सवेरे उठकर 5-7 मिनट इस तरह का चिंतन करके तो देखें, आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। इसी तरह काम पर जाने से पहले आप योग अभ्यास कर लें, काम पर भी 1-2 बार, 1-2-3 मिनट निकाल कर अभ्यास कर लें। जब काम समाप्त करें, घर वापिस आए, फिर अभ्यास कर लें। सोने से पहले एक बार अभ्यास करें। किसी भी चीज का किया गया बार बार का अभ्यास हमारा वैसा ही संस्कार बना देता है, हमारी आदत बन जाती है, और फिर न चाहते हुए भी, हमारे बिना सोचे भी, हमारा मन, हमारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप की तरफ जाती रहेगी। जैसे हम सभी को जब भूख लगती है तो हम भोजन को याद करते हैं, प्यास लगी पानी की इच्छा करते हैं, हमें इच्छा होती है अब चाय पी जाए, भाई थोड़े थक गए हैं, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। इसी तरह जब हम समस्याओं में आ जाएं, तो हमें ख्याल करना है कि सर्वशक्तिवान से शक्तियां ले ली जाएं। जब अशांति हो जाए, क्रोध आने लगे, तो आप संकल्प करो क्यों न शांति के सागर से शांति ले ली जाए। कोई आपको प्यार न दे रहा हो तो याद करो, मेरा बाप स्वयं प्यार का सागर है, क्यों न उससे प्यार प्राप्त कर लिया जाए। जीवन में कभी दुख आ जाए, याद करो सुख सागर सुखों को का दाता, दुख हरने वाला मेरा अपना है, उसे याद कर लो। इस तरह अपनी मेंटलिटी को आप तैयार करें, तो सारा दिन कर्म करते हुए भी आप बहुत अच्छे अभ्यास कर सकेंगे। और सच कहें तो अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है। बार बार अभ्यास करने को ही तपस्या कहा जाता है, तप कहा जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि तप करते थे, अर्थात बहुत ज्यादा अभ्यास करते थे। वो तो लंबा लंबा समय बैठ भी जाते थे, पर हम लंबा समय न भी बैठें, लेकिन एक दिन की दिनचर्या में बहुत बार अभ्यास कर लें, 10-12 बार अभ्यास कर लें, अपने दिन की दिनचर्या भी हम योग अभ्यास से ही समाप्त करें। शुरू भी सवेरे उससे ही करें और अंत भी उसका उससे ही करें। सोने से पहले अपने परम पिता के पास पहुंच जाओ, मन और बुद्धि से उससे बात करो, अपने सारे दिन की दिनचर्या उसके सामने रख दो। कोई टेंशन आ गया हो उसके सामने रख दो, कोई बोझ मन को भारी कर रहा हो उसको बता दो, कोई समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी हो उसके समक्ष प्रस्तुत कर दो, समर्पित कर दो। हे सर्वशक्तिवान, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे फ्रेंड हो, सच्चे सदगुरु हो, सखा बंधु हो, ये समस्या है, इसमें मुझे मदद चाहिए आपकी। आप देखेंगे ईश्वरीय मदद के आप पात्र बन जाएंगे। इस तरह एक तो अभ्यास से अपने मन को नियंत्रण में किया जा सकता है, योग को सफल किया जा सकता है। क्योंकि बार बार अभ्यास करने से क्या फायदा होगा, बार बार अच्छे संकल्प क्रिएट करने से क्या फायदा होगा कि मान लो आप एक या दो घंटे में एक बार दो तीन मिनट योग अभ्यास कर लेते हैं, तो एक दो घंटे में जो भी व्यर्थ संकल्प, निगेटिव विचार, मन पर भारीपन, कोई टेंशन आपके अंदर आ गई होगी वो समाप्त हो जाएगी। आप ये बिल्कुल न सोचे मन में बहुत टेंशन है, अब तो मेडिटेशन करने का मूड ही नहीं है, ये काम आपको करना होगा। टेंशन है इसलिए योग अभ्यास करना है ताकि टेंशन समाप्त हो जाए। कष्ट आया है इसलिए योग अभ्यास करना है क्योंकि कष्टों की वही दवाई है। कोई बड़ा विघ्न आ गया है, योग अभ्यास करना है क्योंकि योग अभ्यास से ही हमारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात वैराग्य और इससे जुड़ा हुआ त्याग। हम सब जानते हैं मानव समाज में आजकल त्याग की बहुत कमी है, कोई कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ छोड़े बिना तो कुछ पाया नहीं जा सकता। एक विद्यार्थी जब एग्जाम का समय आता है तो वो कई चीजें छोड़ देता है ना। अगर वो न छोड़ेगा, खेल देखना, कमेंट्री सुनना, फिल्म देखना, घूमना फिरना, गपशप लगाना, टाइम वेस्ट करना, यदि वो नहीं छोड़ेगा तो एग्जाम में अच्छी सफलता नहीं पाएगा। बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि बहुत चीजों को उस समय मनुष्य छोड़ देता है, वो खान पान भी छोड़ देता है, वो और बहुत सारे व्यर्थ के इंटरेस्ट भी छोड़ देता है। तो क्यों ना हम सभी अपने अंदर कुछ बुराइयों से वैराग ले आए, क्यों ना हम उन चीजों से वैराग ले आए जो विनाशी हैं, जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, उन क्षणिक सुखों का भी त्याग कर दें जो सदा हमारे साथ नहीं चलेंगे। तो वैराग का अर्थ घर छोड़कर जंगल में चले जाना नहीं, वैराग का अर्थ है व्यर्थ की बातों में जो हमारा राग हो गया है, आसक्ति हो गई है, प्यार हो गया है, उसको छोड़ देना, उन चीजों से प्यार करना जो सदा हमारे साथ चलेंगी। इस तरह यदि ज्ञान युक्त होकर मनुष्य अपने जीवन को वैराग से भरे तो उसके जीवन में अनेक चीजों का त्याग स्वतः ही हो जाएगा। इस समय मैं आपको वैराग की एक सुंदर बात बता देता हूँ। ये कलयुग के अंत का समय है, अब सभी आत्माओं को वापिस अपने मूल धाम परम धाम में लौट जाना है, इसलिए हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, हमें घर चलना है, सब कुछ यहीं छोड़कर आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर अपने पुण्य कर्मों के साथ वापिस लौट जाएगी। ये याद करेंगे तो चित्त में वैराग आएगा और हमारी योग की यात्रा बहुत सफल हो जाएगी।
परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लेने से हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। निरंतर अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने से आत्मा में दृढ़ता और निश्चय का बल इकट्ठा होता है, जिसके कारण वह त्याग और तपस्या के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और अपने अंतिम लक्ष्य को सहज प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके मन में कोई सुझाव अथवा प्रश्न हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड 307510। हमारा फोन नंबर है 9419463866।
शिव की प्रीत ने सिखलाया।